ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब ब्रह्म रूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले आकाश स्थूल है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है, वह भी ब्रह्म मात्र है। बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं, वे भी असत हैं, तब और पदार्थों की क्या बात है। हे राम जी, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता, क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है, सम्यक ज्ञान से नहीं रहती। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं, वे सब माया मात्र है, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई पदार्थ नहीं सिद्ध होता, वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो, उसे सत्य जानिए, और जो सम्यक ज्ञान से न रहे, उसे भ्रम मात्र जानिए। यह जो पुर्यष्ट का अविद्रक भ्रम है, अर्थात असत ही सद भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है, तब जगत का भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, पुर्यष्टका में स्थित होकर जीव जैसी भावना करता है, वैसे ही सिद्धि होती है। जैसे बालक अपने परिचय में वैताल की कल्पना करता है, वैसे जीव कला अपने देश काल तत्व आदि की कल्पना करती है और भावना के अनुसार उसको भासित भी होता है। हे रामचंद्र जी, वासना रूपी कलंक से जीव घिरा हुआ है और देह रूपी मंदिर में बैठकर अपने भ्रम के दृश्य देखता है। आदि जीव को जो भ्रम हुआ है, सो अपने स्वरूप को त्याग कर अनात्म भ्रम को देखने से जैसे बालक परछाई में वैताल की कल्पना करे, वैसे ही जीव ने कल्पना कर जैसी भावना की है, वैसा ही उसे भासित होने लगा है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 23। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देख के वे दोनों देवियां शीतल चित्त ग्राम में वास करती भई और चिरकाल जो आत्मा अभ्यास किया था, उसे शुद्ध ज्ञान रूप और त्रिकालज्ञ से संपन्न हुई। उससे उन्हें पूर्व की स्मृति हुई और जो कुछ अरुंधति के शरीर से किया था, सो देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी कृपा से अब मुझको पूर्व की स्मृति हुई, जो कुछ इस देश में मैंने किया था, सो प्रकट भासता है कि यहाँ एक ब्राह्मणी थी, उसका शरीर वृद्ध था और नाड़ियाँ दिखती थी, और भर्ता को बहुत प्यारी और पुत्रों की माता थी, वह मैं ही हूँ। हे देवी, मैं यहाँ देवताओं ब्राह्मणों की पूजा करती थी, यहाँ दूध रखती थी, यहाँ अन्न आदिकों के बासन रखती थी, यहाँ मेरे पुत्र पुत्रिया दामाद और दोहित्र बैठते थे, यहाँ मैं बैठती थी और वृत्तियों को कहती थी कि शीघ्र ही कार्य करो। हे देवी, यहाँ मैं रसोई करती थी और मेरा भर्ता शाक और गोबर ले आता था और सर्व मर्यादा कहता था। ये वृक्ष मेरे लगाए हुए हैं, कुछ फल मैंने इनसे लिए हैं और कुछ रहे हैं, वे ये हैं। यहाँ मैं जलपान करती थी। हे देवी, मेरा भर्ता सब कर्मों में शुद्ध था, पर आत्म स्वरूप से शून्य था, सब कर्म मुझको स्मरण होते हैं। यहाँ मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा गृह में रुदन करता है। यह बेली मेरे गृह में बिस्तरी है और सुंदर फूल लगे हैं। इनके गुच्छे छत्रों की नाई हैं और झरोखे बेली से आवेरे हुए हैं। यह मेरा मंडप आकाश है, इसमें मेरे भर्ता का जीव आकाश है। देवी बोली, हे लीले, इस शरीर के नाभि कमल से 10 अंगुल ऊर्ध्व हृदय आकाश है। सो अंगुष्ठ मात्र हृदय है, उसमें उसका संवित आकाश है। उसमें जो राजसी वासना थी, उससे उसके चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य फुराया कि मैं राजा हूं। यहां उसे 8 दिन मृतक हुए बीते हैं और वह चीरकाल राज्य का अनुभव करता है। हे देवी, इस प्रकार थोड़े काल में बहुत अनुभव होता है और हमारे ही मंडप में वह सब पड़ा है। उसकी पुर्यष्टक में जगत फुरता है, उसमें ही राजा विदुरत है। इस राज्य के संकल्प से उसके संवित इसी मंडप आकाश में स्थित है। जैसे आकाश में गंध को लेके पवन स्थित हो, वैसे ही उसकी चेतन संवित संकल्प को लेकर इसी मंडप आकाश में स्थित है। उसकी संवित इस मंडप आकाश में है। उस राजा की सृष्टि मुझको कोटि योचन पर्यंत भासती है। यदि मैं पर्वत और मेघ अनेक योजन पर्यंत लांघती जाऊं, तब भर्ता के निकट प्राप्त हूं और चिदाकाश की अपेक्षा से अपने पास ही भासती है। अब व्यवहार दृष्टि से वह कोटि योजन पर्यंत है। इससे चलो, जहां मेरा भर्ता राजा विदुरत है, वह स्थान दूर है तो भी निश्चय से समीप है। इतना कहे वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों जैसे खड़ंग की धार श्याम होती है, जैसे विष्णु जी का अंग श्याम है, जैसे काजर श्याम होता है और जैसे भमरे की पीठ श्याम होती है, वैसे ही श्याम मंडप आकाश में पखुरु के समान अंतवाहक शरीर से उड़ी और मेघों और बड़े वायु के स्थान, सूर्य चंद्रमा और ब्रह्मलोक पर्यंत देवताओं के स्थानों को लांघकर इस प्रकार दूर से दूर गई और शून्य आकाश में ऊर्ध्व जाके ऊर्ध्व को देखती भई कि सूर्य और चंद्रमा आदि कोई नहीं भासता। तब लीला ने कहा, हे देवी, इतना सूर्य आदि का प्रकाश था, वह कहाँ गया? यह तो महा अंधकार है। ऐसा अंधकार है कि मानो सृष्टि में ग्रहण होता है। देवी बोली, हे लीले, हम महाआकाश में आई हैं। यहां अंधकार का स्थान है, सूर्य आदि कैसे भासे? जैसे अंधकूप में त्रसरेणु नहीं भासते, वैसे ही यहां सूर्य चंद्रमा नहीं भासते। हम बहुत वृद्ध को आई है। लीला ने पूछा, हे देवी, बड़ा आश्चर्य है कि हम दूर से दूर आई है, जहां सूर्य आदिकों का प्रकाश भी नहीं भासता। इससे आगे अब कहाँ जाना है? देवी बोली, हे लीले, इसके आगे ब्रह्मांड कपाट आवेगा। वह बड़ा वज्रसार है और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार है। उसकी धूलि की कणिका भी इंद्र के वज्र समान है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी कहती ही थी कि आगे महावज्रसार ब्रह्मांड कपाट आया और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार देखकर उसको भी वे लांघ गई, पर उन्हें कुछ भी क्लेश न भया, क्योंकि जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसे ही अनुभव होता है। वह निरावरण आकाश रूप देविया ब्रह्मांड कपाट को लांघ गई। उसके परे 10 गुना जल का आवरण है, उसके परे 10 गुना अग्नि तत्व है, उसके परे दस गुना वायु, उसके परे दस गुना आकाश और उसके परे परमाकाश है। उसका आदि मध्य और अंत कोई नहीं। जैसे बंध्या के पुत्र की कथा के चेष्टा अधिक अंत कोई नहीं होता, वैसे ही परम आकाश है। वह नित्य शुद्ध और अनंत रूप है और अपने आप में स्थित है। उसका अंत लेने को यदि सदाशिव मन रूपी वेग से और विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ होके कल्प पर्यंत धावे तो भी उसका अंत न पावे, और पवन अंत लिया चाहे तो वह भी न पावे। वह तो आदि मध्य और अंत कलना से रहित बोध मात्र है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वे पृथ्वी अब तेज आदि आवरणों को लांग गई तब परम आकाश उनको भासित हुआ। उसमें उनको धूलि की कणिका और सूर्य के त्रसरेणु के समान ब्रह्मांड भासे। वह महाशून्य को धारने वाला परम आकाश है, और चिद अणु जिसमें सृष्टि फुरती है वह ऐसा महासमुद्र है कि कोई उसमें अधव को जाता है और कोई ऊर्ध्व को जाता है, कोई तिर्यक आदि को पाता है। हे रामचंद्र जी, चित्त संवित में जैसा जैसा स्पंद फुरता है वैसा ही वैसा आकार होकर भासता है। वास्तव में न कोई अधः है, न कोई ऊर्ध्व है, न कोई आता है और न कोई जाता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में ज्यों की त्यों स्थित है। फुरने से जगत भासता है और उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है। जैसे बालक का संकल्प उपज के नष्ट हो जाता है, वैसे ही चैतन्य संवित में जगत फुर के नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अध और ऊर्ध्व क्या होते हैं? तिर्यक क्यों भासते हैं और यहाँ क्या स्थित है, सो मुझसे कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परम आकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध बोध रूप है। उसमें जगत ऐसे भासता है जैसे आकाश में भ्रांति से तरुवरे भासते हैं। उसमें अधव और ऊर्ध्व कल्पना मात्र है। जैसे हलों के बेट के चौगिर्द चीटियां फिरती है और उनको मन में अधव ऊर्ध्व भासता है, सो उनके मन में अधव ऊर्ध्व की कल्पना हुई है। हे रामचंद्र जी, यह जगत आत्मा का आभास रूप है। जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर हस्तियों के समूह विचरते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक जगत फुरते हैं। जैसे मंदराचल पर्वत के आगे हस्ती हो, वैसे ही ब्रह्म के आगे जगत है और वास्तव में ब्रह्म रूप है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण सब ब्रह्म ही है, और ये जगत ब्रह्म समुद्र के तरंग है। उन जगत ब्रह्मांडों को देवियों ने देखा। जैसे ब्रह्मांड उन्होंने देखे हैं, वे सुनिए। कई सृष्टि तो उन्होंने उत्पन्न होती देखी और कई प्रलय होती देखी। कितने के उपजने का आरंभ देखा, जैसे नूतन अंकुर निकलता है। कहीं जल ही जल है, कहीं अंधकार ही है, प्रकाश नहीं। कहीं सब व्यवहार संयुक्त है और कहीं वेद शास्त्र के अपूर्व कर्म है। कहीं आदि ईश्वर ब्रह्मा है, उनसे सब सृष्टि हुई है। कहीं आदि ईश्वर विष्णु है, उनसे सब सृष्टि हुई है। और कहीं आदि ईश्वर सदाशिव है, इसी प्रकार कहीं और प्रजापति से उपजे हैं, कहीं नाथ कोई नहीं मानते, सब अनिश्वरवादी है। कहीं तिर्यक ही जीव रहते हैं, कहीं देवता ही रहते हैं और कहीं मनुष्य ही रहते हैं। कहीं बड़े आरंभ करके संपन्न हैं और कहीं शून्य रूप है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टि चिदाकाश में उत्पन्न होती देखी, जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं। चिदात्मा में आभास रूप पुतली है और जैसे फुरना होती है उसके अनुसार फुरती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दोनों देवियां राजा के जगत में आकर अपने मंडप स्थानों को देखती भई। जैसे सोया हुआ जाग के देखता है, वैसे ही जब अपने मंडप में उन्होंने प्रवेश किया तब क्या देखा कि राजा का शव फूलों से ढांपा हुआ है। अर्धरात्रि का समय है, सब लोग गृह में सोए हुए हैं और राजा पद्म के शव के पास लीला का शरीर पड़ा है और अंतःपुर में धूप चंदन कपूर और अगर के सुगंध भरी है। तब वे विचारने लगी कि वहां चले जहां राजा राज्य करता है। उसकी पुर्यष्टक में विदुरथ का अनुभव हुआ था। उस संकल्प के अनुसार विदुरथ की सृष्टि देखने को देवी के साथ लीला चली और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग को उड़ी। जाते जाते ब्रह्मांड की बाट को लांघ गई, तब विदुरथ के संकल्प में जगत को देखा। जैसे तालाब में सेवार होती है, वैसे ही उन्होंने जगत को देखा। सप्तद्वीप, नवखंड, सुमेरु पर्वत, द्वीप आदि सब रचना देखी और उसमें जम्बूद्वीप और भरतखंड और उसमें विदुरथ राजा का मंडप स्थान वह देखती भई। वही उन्होंने राजा सिद्ध को भी देखा कि राजा विदुरथ की पृथ्वी की कुछ हद उसके भाइयों ने दबाई थी और उसके लिए सेना भेजी। राजा विदुरथ ने सुन के सेना भेजी और दोनों सेना मिलके युद्ध करने लगी। फिर उन्होंने देखा कि त्रिलोकी युद्ध का कौतुक देखने को आया है। देवता विमानों पर आरूढ़ और सिद्ध चारण गंधर्व और विद्याधर शास्त्रों को छोड़ देखने को स्थित भय है। विद्याधरी और अप्सरा भी आई है कि जो शूरमा युद्ध में प्राणों को त्यागेंगे हम उनको स्वर्ग में ले जावेंगे। रक्त और मांस भोजन करने को भूत राक्षस पिशाच योगिनियां भी आन स्थित भई हैं। हे रामचंद्र जी, शूर पुरुष तो स्वर्ग के भूषण है और अक्षय स्वर्ग को भोगेंगे और जिनका मरना धर्म पक्ष से संग्राम में होगा वह भी स्वर्ग को जावेंगे। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, शूरमा किसको कहते हैं और जो युद्ध के करके स्वर्गों को नहीं प्राप्त होते वह कौन है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो शास्त्र युक्ति से युद्ध नहीं करते और अनर्थ रूपी अर्थ के निमित्त युद्ध करते हैं सो नरक को प्राप्त होते हैं, और जो धर्म गौ ब्राह्मण मित्र शरणागत और प्रजा के पालन के निमित्त युद्ध करते हैं वे स्वर्ग के भूषण हैं। वे ही शूरमा कहते हैं और मर के स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में उनका यश होता है। जो पुरुष धर्म के अर्थ युद्ध करता है वे अवश्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और जो अधर्म से युक्त करते हैं वे मृतक होकर नरक को प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष कहते हैं कि संग्राम में मरे हुए सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं वे मूर्ख हैं। स्वर्ग को वही जाते हैं जिनका मरना धर्म के अर्थ हुआ है। जो किसी के भोग के अर्थ युद्ध करते हैं सो नरक को ही प्राप्त होते हैं। हे राम जी, दोनों देवियों ने रण संग्राम में क्या देखा कि एक महाशून्य वन है, उसमें जैसे दो बड़े समुद्र उछलकर परस्पर मिलने लगे वैसे दोनों सेना जुड़ी हैं। तब उन्होंने क्या देखा कि सब योद्धा आन स्थित हुए हैं और मच्छव्यूह और गरुड़व्यूह और चक्रव्यूह भिन्न भिन्न भाग करके दोनों सेना के योद्धा एक एक होकर युद्ध करने लगे हैं। प्रथम परस्पर देख एक ने कहा कि यह बाण चलाओ और दूसरे ने कहा कि नहीं तू चला। उसने कहा कि तू ही प्रथम चला। निदान सब स्थिर हो रहे मानो चित्र लिखे छोड़े हैं। इसके अनंतर दोनों सेना के और योद्धा आए मानो प्रलय काल में मेघ उछलते हैं। उनके आने से एक एक योद्धा की मर्यादा दूर हो गई। तब इकट्ठे युद्ध करने लगे और बड़े शस्त्रों के प्रवाह प्रहार करने लगे। कहीं खड़ोंगे के प्रहार चलते थे और कहीं कुल्हाड़े, त्रिशूल, भाले, वर्षिया, कटारी, छुरी, चक्र, गदा आदि शस्त्र बड़े शब्द करके चलने लगे। जैसे मेघ वर्षा काल में वर्षा करते हैं वैसे ही शस्त्रों की वर्षा होने लगी। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल के जितने उपद्रव थे सब इकट्ठे हुए हैं। योद्धा युद्ध की ओर आए और कायर भाग गए। निदान ऐसा संग्राम हुआ कि अनेकों योद्धाओं के सिर काटे गए और उनके हस्ती घोड़े मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे कमल के फूल काटे जाते हैं वैसे ही उनके शीश काटे जाते थे। तब दोनों सेनाओं के राजा चिंता करने लगे कि क्या होगा। हे रामचंद्र जी, इस युद्ध में रुधिर की नदियां चली, उसमें प्राणी बहे जाते थे और बड़े शब्द करते थे जिनके आगे मेघों के शब्द भी तुच्छ भासते थे। हे रामचंद्र जी, दोनों देवियां संकल्प के विमान कल्प के आकाश में स्थित हुई तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसा युद्ध हुआ है जैसे महाप्रलय में समुद्र एक रूप हो जाते हैं और बिजली किनाई शस्त्रों का चमत्कार होता था। जो शूरवीर हैं उनके रक्त की जो बूंदियां पृथ्वी पर पड़ती उन बूंदों में जितने मृतिका के कण लगते उतने ही वर्षों वे स्वर्ग को भोगेंगे। जो शूरमा युद्ध में मृतक होते थे उनको विद्याधरिया स्वर्ग को ले जाती थी और देवगण स्तुति करते थे कि ये शूरमा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और अक्षय अर्थात चिरकाल तक स्वर्ग भोगेंगे। हे रामचंद्र जी, स्वर्गलोक के भोग मन में चिंतन करके शूरमा हर्षवान होते थे और युद्ध में नाना प्रकार के शस्त्र चलाते और सहन करते थे और फिर युद्ध के सम्मुख धीरज करके स्थिर होते थे। जैसे सुमेरु पर्वत धैर्यवान और अचल स्थित है उससे भी अधिक धैर्यवान थे वे पुरुष। संग्राम में योद्धा ऐसे चूर्ण होते थे जैसे कोई वस्तु उखली में चूर्ण होती है परंतु फिर सम्मुख होते और बड़े हाहाकार शब्द करते थे। हस्ती से हस्ती परस्पर युद्ध करते शब्द करते थे। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार अनेक जीव नाश को प्राप्त हुए। जो शूरमा मरते थे उनको विद्याधरिया स्वर्ग को ले जाती थी। निदान परस्पर बड़े युद्ध हुए हैं। खड़ंग वाले खड़ंग वालों से और त्रिशूल वालों से युद्ध करते। जैसा जैसा शस्त्र किसी के पास हो वैसे ही उसके साथ युद्ध करें और जब शस्त्र पूर्ण हो जावे तो मुष्टि के साथ युद्ध करें। इसी प्रकार दशो दिशाएं युद्ध से परिपूर्ण हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार बड़ा युद्ध हुआ तो गंगा जी के समान शूरमों के रुधिर का तीक्ष्ण प्रवाह चला। वह प्रवाह में हस्ती, घोड़े, मनुष्य, रथ सब बह जाते थे और सेना नाश को प्राप्त हो जाती थी। हे रामचंद्र जी, उस समय बड़ा क्षोभ उदय हुआ और राक्षस, पिशाच आदि तामसी जीव मांस भोजन करते और रुधिर पान करते थे और वे आनंदित होते थे। जैसे मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र को क्षोभ हुआ था, वैसे युद्ध संग्राम में योद्धाओं का क्षोभ हुआ और रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती, घोड़े, रथ, शुरमा, तरंगों किनाई उछलते हुए दृष्टि आते थे। रथ वालों से रथ वाले, घोड़े वालों से घोड़े वाले, हस्ती वालों से हस्ती वाले और प्यादे से प्यादे युद्ध करते थे। हे रामचंद्र जी, जैसे प्रलय काल की अग्नि में जीव जलते हैं, वैसे ही जो योद्धा रणभूमि में आवे सो नाश को प्राप्त हो। जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है और जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, वैसे ही रणभूमि में दशों दिशाओं के योद्धा प्रवेश करते थे। किसी का शीश काटा जावे और युद्ध करता हुआ धड़ अलग होए, किसी की भुजा काटी जाए और किसी के ऊपर रथ चले जावे और हस्ती, घोड़े उलट उलट पड़े और नाश हो जावे। हे रामचंद्र जी, दोनों राजाओं की सहायता के निमित्त पूर्व दिशा काशी, मद्रास, भीला, मालव, सकला, कवटा, किरात, म्लेच्छ, पारसी, काश्मीर, तुरक, पंजाब, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत इत्यादि के अनेक देशपाल, जिनके बड़े भुजदंड, बड़े केश और बड़े भयानक रूप थे, युद्ध के निमित्त आए थे। बड़ी ग्रीवा वाले एक टंगे, एकाचल, एकाक्ष घोड़े के मुख वाले, श्वान के मुख वाले और सुमेरु और कैलाश के राजा और जितने कुछ पृथ्वी के राजा थे सो सब आए। जैसे महाप्रलय के समुद्र उछलते हैं और दिशा स्थान जल से पूर्ण होते हैं, वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए और दोनों ओर से युद्ध करने लगे। चक्रवाले से और खड़ंग, कुल्हाड़े, त्रिशूल, छुरी, कटारी, परछी, गदा, वाण आदि शस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। एक कहे कि प्रथम मैं जाता हूं, दूसरा कहे कि मैं प्रथम जाता हूं। हे रामचंद्र जी, उस काल में ऐसा युद्ध होने लगा कि कहने में नहीं आता। दौड़ दौड़ के योद्धा रण में जावे और मृत्यु को प्राप्त हो। जैसे अग्नि में घृत की आहुति भस्म होती है, वैसे रण में योद्धा नाश को प्राप्त हुए थे। ऐसा युद्ध हुआ कि रुधिर का समुद्र चला, उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और मनुष्य तृणों की नाई बहते देखे और संपूर्ण पृथ्वी रक्तमय हो गई। जैसे आंधी से फल, फूल और वृक्ष गिरते हैं, वैसे पृथ्वी पर कट कट शब्द करते शीश गिरते थे। जो उस काल में युद्ध हुआ वह कहा नहीं जाता। सहस्त्रमुख शेषनाग भी उस युद्ध के कर्मों को संपूर्ण वर्णन न कर सकेंगे, तब और कौन कहेगा। मैंने वह संक्षेप से कुछ सुनाया है।
हरि हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।